हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। एपिसोड 66। वेदांश ने बहुत ही प्यार से अंबिका के सिर पर टच किया और उसकी गाल को थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ, तुम्हारा रेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सारी बेकार की फालतू चीजें तो चलती ही रहेंगी। अपनी आंखें कसकर बंद करके खोलने के बाद वेदांश की तरफ देखते हुए सार्थक बोला, मेरा इन्वेस्टिगेशन तुम्हें बेकार और फालतू की चीज लगता है? देखो, सबके काम तुम्हारी तरफ फालतू नहीं होते। वेदांश ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, एक दूसरे के काम के बारे में अगर हम ना ही बात करें तो बेहतर होगा। अंबिका ने फिर से इन दोनों के बीच में बोलते हुए कहा, देखो सार्थक, प्रोफेशनल होकर अपना काम करो, कुछ भी पर्सनल है तो उसके बारे में बात मत करो तुम दोनों ही। और रही बात तुम्हारे सवाल की, तो हमारी शादी की रात हम दोनों अपने रूम में थे एक साथ, और तभी इमरजेंसी अलार्म की वजह से वेदांश को पता चला कि घर के अंदर कोई आ गया है और वह अकेला ही उसे ढूंढने के लिए गया था। लेकिन मुझे भी जानना था बाहर क्या चल रहा है, इसीलिए मैं खुद कमरे से निकलकर वहाँ पर गई। उस वक्त वेदांश और वहाँ पर कोई और एक लड़का था, मैं उसे नहीं पहचानती। उन दोनों के बीच हाथापाई चल रही थी। इसी बीच उस लड़के ने अपने हाथ में पड़ी हुई बंदूक चलाई थी, जिसकी गोली धोखे से आकर मुझे लगी, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ वेदांश के पीछे खड़ी हुई थी। वह शायद वेदांश को मारना चाहता था। अंबिका ये सब बोलती जा रही थी और सार्थक उसकी सारी बातें अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने के साथ साथ डायरी में भी कुछ पॉइंट को नोट कर रहा था। लेकिन उसके बाद का सबसे ज्यादा असर वेदांश पर पड़ रहा था। जब उसने अंबिका के मुंह से ये बात सुनी कि वेदांश को लगने वाली गोली अंबिका को लग गई, तो वेदांश भी उसे रात से इसी गिल्ट में था और इसीलिए वह यहाँ से कहीं जा नहीं पाया था। और अभी अंबिका के मुँह से वही बात सुनकर उसे फिर से काफी ज्यादा बुरा लगा। अंबिका का बयान लेने के बाद सार्थक वहाँ से चला गया, क्योंकि अंबिका आंखें बंद करके चुपचाप लेटी हुई थी और वेदांश के साथ वह वहां पर रुकना नहीं चाहता था। लेकिन वेदांश अभी भी वहां पर हॉस्पिटल बेड पर बैठा हुआ था और अंबिका के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। दवाइयों और इंजेक्शन के असर की वजह से अंबिका दोबारा सो चुकी थी, लेकिन वेदांश वहां पर बैठा ही था। तभी उसके असिस्टेंट ने अंबिका के हॉस्पिटल वार्ड रूम का दरवाजा धीरे से खोला और वेदांश को बाहर आने का इशारा किया, और उसका इशारा समझकर वेदांश एकदम धीरे से अपनी जगह से उठा और काफी दबे पांव चलते हुए वहां कमरे से दरवाजे की तरफ चला गया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से अंबिका की नींद खुले। हॉस्पिटल रूम से बाहर जाने से पहले दरवाजे के पास रुककर वेदांश ने एक नज़र अंबिका की तरफ देखा और फिर बाहर निकल गया। उसने देखा तो बाहर उसकी माँ भी खड़ी हुई थी, और वेदांश को बाहर आते देख कर उन्होंने तुरंत ही पूछा, कैसी है अंबिका, उसे होश आया, डॉक्टर ने क्या बोला, उसे ज्यादा दर्द तो नहीं है ना? अपनी माँ के इतने सारे सवाल सुनकर वेदांश ने बस एक नज़र देखा और इतना कहा, वह अभी फिर से सो रही है, डॉक्टर ने कहा है उसका ज्यादा आराम करना जरूरी है और घाव भी काफी गहरा है। अपनी माँ के सवालों का जवाब देकर वेदांश वहाँ से सीधा अपने असिस्टेंट के पास चला गया और अपनी माँ की बात सुनने के लिए वह वहाँ पर रुका भी नहीं। वेदांश की माँ को उससे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं थी। उनके हिसाब से उसने इतना ही काफी ज्यादा बोल दिया था उनके सवालों के जवाब में। लेकिन फिर वह थोड़ा सा आगे आकर खड़ी हो गई और कांच की खिड़की से अंदर सोई हुई अंबिका को देखने लगी। वेदांश अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला गया था, लेकिन वह अपने 3-4 बॉडीगार्ड्स को वहाँ पर ही छोड़कर गया था, क्योंकि उसका जाना जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ अक्षय का अपार्टमेंट। अक्षय और मानस बस अभी कुछ देर पहले ही घर से निकले थे और उसके बाद देविका के पापा भी पार्क तक टहलने के लिए घर से चले गए थे, इसलिए देविका घर पर अकेली थी। लेकिन तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया और देविका की भौहें कंफ्यूजन से अंदर की तरफ मुड़ गईं। देविका ने अपने आप से सवाल करते हुए कहा, कौन होगा दरवाजे पर, भाई तो अभी गए हैं, बाबा वापस आ गए हैं क्या? इतनी देर में तो वो पार्क तक पहुँच भी नहीं पाए होंगे। अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए देविका दरवाजे तक आई, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले उसने आवाज देकर पूछा, कौन कौन है? दूसरी तरफ से देविका को थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, मैं हूँ देविका, खोलो दरवाजा। देविका को वो आवाज थोड़ी सुनी हुई लग रही थी, इसलिए उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा उसके पापा जख्मी हालत में थे और कार्तिक ने उसके पापा को सहारा देकर पकड़ा हुआ था। उसके पापा के सिर और हाथ पर खरोंच के निशान थे, जैसे कि वह कहीं पर गिर गए हैं और इसीलिए उन्हें चोट आई हुई थी। अपने पापा को ऐसी हालत में देखते ही देविका एकदम से घबरा गई और उसने जल्दी से आगे जाकर अपने पापा को सहारा देके हुए दूसरी तरफ से पकड़ लिया और बहुत ही ज्यादा घबराई हुई आवाज में कार्तिक से पूछने लगी, क्या हुआ मेरे बाबा को, ये ऐसी हालत में क्यों है और तुम्हारे साथ क्यों? एक साथ उसने इतनी सारी बातें बोली। कार्तिक कोई भी जवाब दे पाता उससे पहले ही देविका के पापा ने कहा, वो मैं रास्ते में गिर गया था और इसने मुझे उठाया और सहारा देकर वापस घर लाया। मैं तो पार्क तक पहुंच भी नहीं पाया। पता नहीं क्यों मैं घर से बाहर निकला। हमेशा तुम बच्चों के लिए मुसीबतें खड़ी करता रहता हूँ। बेटा मुझे माफ कर दो। देविका के पापा खुद भी दर्द में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पछतावे में देविका से माफ़ी मांगी तो देविका ने तुरंत ही कहा, नहीं बाबा, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? और आपको तो खुद इतनी चोट लगी है। आप हमें कभी भी परेशान नहीं करते। प्लीज इतना मत सोचिए और यहाँ पर बैठिए। कार्तिक और देविका ने देविका के पापा को सोफे पर बिठाया और देविका ने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच, आपने इतनी मदद की मेरे बाबा की। देविका ने जैसे ही उसे थैंक यू बोला तो कार्तिक ने तुरंत कहा, अरे नहीं, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? ये तो मेरा फर्ज है। मैं तो किसी की भी मदद करता, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए और हो सके तो अकेले बाहर मत जाइए। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कार्तिक ने देविका के पापा की फिक्र करते हुए कहा। और देविका जब तक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और अपने पापा की चोट पर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाने लगी, कार्तिक अभी भी वहां पर खड़ा था तो देविका ने उसे भी बैठने को कहा और उसके बाद वह दोनों के लिए पानी लेकर आई। उसने कार्तिक को भी पानी ऑफर किया, लेकिन कार्तिक ने मना कर दिया और उसके पापा ने पानी पी लिया। देविका ने साथ में उन्हें कुछ दवाइयाँ भी दी और उसके बाद कार्तिक की मदद से उन्हें उनके कमरे तक लेकर आई, क्योंकि उन्हें चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। देविका और कार्तिक दोनों चुप थे, क्योंकि कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, लेकिन देविका के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। और तभी उसने एकदम से पूछा, कौन हो तुम? देविका के इस सवाल पर कार्तिक ने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या? देविका ने दोबारा से कहा, हाँ, मेरा मतलब है कौन हो तुम और कैसे तुम्हें पता चल जाता है कि हमारे परिवार में किसी को भी मदद की जरूरत है? उस दिन तुमने मेरी मदद की और आज मेरे बाबा की, लेकिन थैंक यू सो मच। मेरे बाबा की तबीयत तो ठीक नहीं रहती और आज कई दिनों बाद ही वो टहलने के लिए जा रहे थे, इसीलिए हमने उन्हें नहीं रोका और ये सल हो गया। पता नहीं तुम नहीं होते तो वो वापस घर कैसे आते। देविका ने काफी इमोशनल होकर ये सारी बातें बोली तो कार्तिक उसकी बातों का मतलब समझ गया। उसने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अरे कोई नहीं, बस इतना समझ लो, वह भगवान मुझे भेज देता है जहाँ पर भी मेरी जरूरत होती है। टू बी कंटिन्यूड।
कैसा लगा आप लोगों को आज का एपिसोड, कमेंट में जरूर बताया करिए। और वैसे भी स्टोरी बोरिंग नहीं है, ये अभी ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। और हमें पता है आप लोग वेदांश और अंबिका पर ही सारा फोकस चाहते हैं और उनकी स्टोरी जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर भी तो हैं ना स्टोरी में, इसलिए कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत उनके बारे में भी बताना पड़ेगा। इसलिए प्लीज थोड़ा सा विश्वास रखकर स्टोरी पढ़ें। जल्द ही आप लोगों को अंबिका वेदांश के मोमेंट भी देखने को मिलेंगे, बस एक दो दिन में ही। जब तक ये सारी चीजें भी तो इंटरेस्टिंग है। और क्या लगता है कार्तिक का सच पता चल पाएगा देविका को, और क्या इस बारे में वो अक्षय को कुछ बताएगी?